ओम शांति। आप सबका फिर से इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। अब हम आदरणीय भ्राता जी का हृदय के साथ करतल ध्वनि के साथ हम भाई जी को भी स्वागत करते हैं, साथ फूलों से भी, मैं बहनों से बोल रही हूँ, फूलों से भी भाई जी का हम स्वागत करते। जैसे आज हमें दादी जी ने कहा, डोंट वरी नो प्रॉब्लम, तो इस टॉपिक पर डोंट वरी बी हैप्पी, इस टॉपिक पर स्पष्ट करने हमें जा रहे हैं हमारे आदरणीय ब्रूस मनु भाई जी, जो हमें अपने जीवन के अनुभवों से, जीवन के कई अनुभवों से हमें भी लाभान्वित करेंगे। मैं भाई जी के बारे में दो शब्द बोलना चाहती हूँ कि आप इस 50 वर्षों से भी अधिक की संस्था की सेवाओं से आप जुड़े हुए हैं, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश में भी, विदेश भ्रमण कर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस संस्था को रिप्रेजेंट किया है। आप इस ब्रह्म कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं और पॉलिटिकल सर्विस विंग के आप चेयरपर्सन भी हो। ब्रह्म कुमारी के द्वारा जो प्योरिटी न्यूज़पेपर है उसके आप निर्माता और चीफ एडिटर भी हो। दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर में भी अपने विभिन्न सेवाओं में उसका अमूल्य योगदान भी आपका रहा हुआ है। आपकी विशेषता यही है कि ज्ञान के गुह्य रहस्यों को भी आप सरल करके समझाने की तरीका आप में है। तो इस टॉपिक पर चिंता छोड़ो और खुश रहो, इस पर स्पष्ट कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ भ्राता बुजमन भाई जी। ऑप्शन
ओम शांति। ये जो हमने गीत सुना, अगर आप सबको इसकी एक एक कैसेट दे दी जाए तो मेरा ख्याल है काम पूरा हो जाना चाहिए। इसमें उसने सारा फॉर्मूला बताया है, लेकिन दुनिया में होता यही है, फॉर्मूला पता भी हो तो अप्लाई नहीं हो पाता है। इसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, ये समझते हैं कर नहीं पाते। इसलिए जो कुछ आप यहां सुनेंगे, जो सुना है वो आपको अच्छा तो लगेगा, कौन व्यक्ति होगा जो सदा खुश नहीं रहना चाहता होगा, लेकिन उसकी जो पहला हिस्सा है बी हैप्पी तो ठीक है, उसका पहला हिस्सा क्या है, डोंट वरी। अब क्वेश्चन ये है कि वरी कैसे ना करें है? एक डॉक्टर ने पेशेंट को कहा रिलैक्स, उसने कहा आपने तो कह दिया पर मैं रिलैक्स हूं कैसे, सवाल है ना ये। इसलिए आइए विचार करते हैं कि हमारी खुशी को जो हमारे पास है या जो हम सारे दिन में इकट्ठी करते हैं उसको फिर कौन पंचर कर देता है, ये सवाल है। सारा दिन हम क्या करते हैं, लाइफ का एम क्या है, खुशी इकट्ठी करो, अच्छा, लेकिन वो शाम को फिर वहीं स्क्वायर वन में आ जाते हैं, बात क्या है। इसलिए ये जो डोंट वरी है इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। आप सब अपने अपने बादशाह हैं, हर व्यक्ति अपने घर का तो बादशाह है, अपने आप का तो बादशाह है। अब हो वो बादशाह, बादशाह के पास बहुत पावर्स होती हैं, लेकिन अगर बेफिक्र बादशाह हो तो बादशाह, और अगर उसको फिक्र लग गया तो फिर बादशाह होते हुए भी वो बादशाह नहीं है। मान लीजिए कोई बादशाह सारा दिन बिजी हो रहकर हंटिंग करता हुआ, काम काज करता हुआ, थका हुआ, शाम को अपने पैलेस में वापस आता है, खूब थका हुआ है, और अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में जाता है कि आज तो भाई मैं बहुत थका हुआ, बस इतनी जोर से नींद आ रही है, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उसका जो बाहर दरबान होता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो कहता है जहां पना आइए, आप थके हुए हैं, आराम फरमाइए, लेकिन एक घंटा पहले एक काला कोबरा आपके स्लीपिंग चैम्बर में घुस गया था, हमने बहुत कोशिश की उसको निकालने की, ढूंढने की, मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, आप तो बादशाह हैं, सारी सल्तनत के मालिक हैं, और आप थके हुए भी हैं, आप जाइए सो जाइए, कुछ नहीं, जरूरी थोड़ी है कि कोबरा आपको काटने आया है, कोई बात नहीं, अब वो चले जाए अंदर तो बताइए क्या होगा। खूब थके हुए, गिरते ही सो जाते, लेकिन अच्छा, एक व्यक्ति दौड़ना चाहता है, पैर में कांटा लग गया, अब क्या करे, कांटा निकालने में जरा सी तकलीफ होती है, आप देखेंगे जब भी हमारे कांटा लगता है तो हम उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अब कांटा निकालने की तकलीफ भी किसी बच्चे को देखो, कहता नहीं नहीं मत निकालो, उसको ये पता नहीं कि जरा सा निकालेंगे तो फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को सब चीजें प्राप्त हों, एक कम हो, तो क्या होगा? हाँ, बाहर तूफान आ रहा है, आपके 12 खिड़कियां हैं, आपने 11 बंद कर ली बहुत मेहनत करके, एक रह गई, तो 11 का फायदा होगा? अच्छा, तो आज हमारी स्थिति क्या है कि हम कहते थे कोई ऐसा टाइम था, दैहिक दैविक भौतिक राजा राम राज ना करें संतापा, हैं? आज क्या हो गया कि या तो हमें तन का रोग लगा हुआ है, बॉडीली कोई प्रॉब्लम है, या फिर मन का रोग लगा हुआ है, या धन तंग कर रहा है, या नेचुरल क्लेमिटीज, उसको तो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और आजकल की स्थिति यह है, इतनी बिगड़ती जा रही है कि एनीथिंग कैन हैपन टू एनीवन एनीवेयर एनी टाइम, ये हमारा हाल है, कोई भरोसा ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम कहें डोंट वरी बी हैप्पी, तो कोई मैजिकल फार्मूला होना चाहिए कि नहीं? अगर किसी के पास टेम्परेरीली सब कुछ ठीक ठाक भी है, उसको ये फिक्र है कि कब तक रहेगा ये, क्योंकि चारों तरफ आगे पीछे देखता है कि बड़ा हर चीज अनस्टेबल है, तो इसलिए कोई ऐसा फार्मूला जो किसी ने ट्राई किया हो, टेस्ट किया हो, उसमें कुछ सफलता पाई हो, वो आपके साथ शेयर करे तो कुछ फायदा है, नहीं तो हैप्पीनेस पर बहुत किताबें हैं, हैप्पीनेस सिखाने वाले भी हैप्पी नहीं रहते, कहते जाके क्या भाषण करना है भाई, सोचो। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग जो आपको बताते हैं, ये जीवन की प्रयोगशाला में टेस्टेड एंड ट्राइड है, और उसका सबूत यह है कि जो कुछ आपको बताया जाता है, आप इमीडिएटली उसको सिटिंग हियर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। बाकी यह है कि इसको सुनने के बाद उसको थोड़ा अभ्यास तो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उसको अभ्यास नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, जैसे लोग डाइटिंग के लिए जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, वो आपको फाका करवाते हैं, खाना कंट्रोल करते हैं, आप हल्के होके आ जाते हैं, खूब पैसा लेते हैं, उस जेब से भी हल्के होके आ जाते हैं, बाद में महीने बाद आपका वही वजन हो जाता है, इसलिए वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस है। तो हमको ये देखना है कि कई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी अंडरस्टैंडेबल हैं, और हम उसको अपने जीवन में भी फील करते हैं, और उसको किसी तरह से हम प्रयोग में लाए। पहली बात तो ये है, हमको जो खुशी चाहिए वो सदा की चाहिए या कभी कभी की, पहले ये बताइए। क्यों जी? पक्की बात है, क्योंकि आजकल के समय में जबकि लोग इसको असंभव समझते हैं, खुशी थोड़ी थोड़ी मिलने को भी तरसते हैं, वो कहे जी सदा की खुशी हो जाएगी, तो ये तो एक बड़ी फैंसीफुल बात है, संभव नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमें सदा की खुशी क्यों नहीं है। पहली बात, कोई चीज अगर आप उसको सदा चाहते हैं तो उसको लेने वाला भी सदा रहने वाला होना चाहिए कि नहीं? आजकल भी क्या होता है, हम लाइफ लॉन्ग पहले तो स्ट्रगल करते हैं, फिर जरा एस्टेब्लिश होते हैं, फिर कुछ अटेन करते हैं, करते 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 हमारी आयु पूरी हो जाती है, जो कुछ हम करते भी हैं वो यहीं रह जाता है, तो सदाकालीन तो नहीं रहा है। उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, खत्म हो गई बात। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि चाहते तो सदाकाल की हैं, लेकिन जिसको लेनी है उसकी कितनी अवधि है, उसकी कितनी ड्यूरेशन है, उसकी कितनी लाइफ है। तो आपका क्या ख्याल है कि हम जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं वो कितने समय की तैयारी कर रहे हैं, हम क्या सोच के कर रहे हैं? ऑल अवर एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेज किसके लिए लगता है, और कौन सी चीज है जो हमारे पास सदा रहेगी? जब हम ही सदा नहीं रहेंगे तो फिर, तो पहली बात जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं और जो हमारी एटर्नल स्पिरिचुअल विजडम है, जो गीता में भी लिखी हुई है, वो ये है। क्या है वो? व्हाट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ गीता? फर्स्ट लेसन जी, जी नहीं, वो बाद के हैं, कर्म करने वाला कौन। फर्स्ट लेसन गीता का ये है, आप आत्मा हैं, यू आर ए सोल। आत्मा को आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, एटर्नल है, अनादि है, अविनाशी है, और आप आत्मा है। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम गीता को तो मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन गीता की मानते हैं, जो गीता ने कहा वो मानते हैं या सिर्फ गीता को ही मानते हैं? तो अगर आप फर्स्ट लेसन भी ले लें आज, अपने अंदर समझें, तो आपकी कम से कम जो खुशी लेने वाला है वो तो अविनाशी हो जाए, नहीं तो आप इकट्ठी करते रहें और बाद में हो गया पूरा। जैसे वो कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा के पास बहुत लैंड थी, उसने कहा कि जो भी व्यक्ति जाए और सूर्य शुरू उगने पर वो चलना भागना शुरू कर दे और अस्त होने पर वापस आ जाए, तो जितनी लैंड वो नापेगा उसकी। आपको पता है बचपन में पढ़ाते हैं, क्या हुआ, वो व्यक्ति जाता था, आधा रास्ता लौटने की बजाय थोड़ा लालच में सोचता था थोड़ा और नाप लूं, तेजी से वापस आ जाऊंगा। वो आने से पहले ही सूर्य अस्त हो जाता था, या उसका अस्त हो जाता था, असली वाला अस्त हो जाता था, छुट्टी, ग्रीड। तो इसी प्रकार से हम ग्रीड भी करते रहे, अच्छा भी बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, भोगेंगे कहां? इस जीवन में भी प्रॉब्लम है। अगर आप नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही ले लें तो आजकल अशोर्ड है, कागज पर तो भारत सरकार ने हमारी आयु बहुत बढ़ा दी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लेकिन जो डॉक्टर बैठे हैं या आम कॉमन व्यक्ति सोच सकता है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है? वाटर पोल्यूटेड है, एयर पोल्यूटेड है, साउंड प्रदूषण है, धरती में इंसेक्टिसाइड्स हैं, सारी केमिकल्स हैं, मनुष्य को तनाव है जो बढ़ता जा रहा है, तो समझ में तो नहीं आता ये कागजी कार्रवाई नहीं तो और क्या है, है कि भाई आपकी सारे तरीके उल्टे हो रहे हैं और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, कागज पर बढ़ा दो। इसलिए हमें ये देखना है कि जो हम हैं, पहले वक्त में कम से कम आयु कुछ अशोर होती थी, अब पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए। तो जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की अनसर्टेनिटी होती है तो और भी कंफ्यूज और डिस्टर्ब होकर उल्टे काम करना शुरू कर देता। मान लीजिए आज कोई कह दे कि आज पे शहर में आज वाटर पानी नहीं आना, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बाल्टियां भर के रख लोगे, कटोरे भी भर लोगे, पानी नहीं आना है, 12 बजे से पानी नहीं आना। अगर वो 11 बजे अनाउंस कर दे नहीं नहीं पानी आज रहेगा, आप सारा बहा दोगे। इसी प्रकार से जिस चीज की थोड़ा सा अभाव की आशंका हो, व्यक्ति उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब जब हमें पता है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रांटेड नहीं है ना, हालांकि बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम करती हैं कि आपकी लाइफ को इंश्योर करेंगे, थोड़े से पैसे दे दो, लेकिन वो तो डेथ इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ तो किसी की कोई इंश्योर करता नहीं। अब आप देखिए कि जब आपको पता नहीं होता तो आप क्या करते हैं, जो काम आपको जवानी में करना चाहिए वो बचपन में करना शुरू कर देते हैं, जो बुढ़ापे में करना चाहिए वो वन स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो क्या होगा, कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले फर्स्ट प्री रिक्विजिट ये है कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई करें। अगर हम आइडेंटिटी क्राइसिस में रहेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस रहेगा ही रहेगा। तो पहली बात है, आप क्या समझते हैं, आप शरीर हैं या आत्मा हैं? हम तो भारतवासी हैं, है? अच्छा, जो आप में से समझते हैं सचमुच हम आत्मा हैं, जरा अपना दायां हाथ उठाएंगे। ये कोई स्कूल तो नहीं है, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने बायां उठाया, कोई बात नहीं। अच्छा, क्रिकेट में भी लेफ्ट हैंडर होते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो समझते हैं आप हम आत्मा हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए, सीधी बात है, हमने जन्म लिया, हर एक ने लिया, अलग अलग तरह की परिस्थितियों में लिया, उसका आधार क्या था? अगर कोई आत्मा को ना माने और तो बड़ी अनइक्वल रेस हो जाएगी। एक व्यक्ति ऑलरेडी आधा रेस क्रॉस करके खड़ा है, एक बिगिनर है, कोई धनवान है, किसी के वेल प्लेस्ड है पेरेंट्स, किसी के हेल्थ ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हर व्यक्ति सिंगल लॉ जो दुनिया में चलता है, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा वो इनइलेक्टेबल है, उस लॉ को कोई तोड़ नहीं सकता। उसके अनुसार हमारा जन्म हुआ। अच्छा, हम साथ तो कुछ नहीं लाए थे, आते ही आंख खोलते ही हमें कई सारे साधन कई सारी सुविधाएं अपने अपने अनुसार मिल गई। अब हम जीवन काल में उसको बढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन हम इसको छोड़ते हैं, छोड़ना तो है ही, ये तो पक्का है, और कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहा जो छोड़े ना, आपका ख्याल है कोई था? हैं, कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है, आपको पता ना, कहानी आती है, उसने पूछा पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो एक प्रश्न उसने यही किया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसने कहा हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन हम समझते मेरी नहीं होगी। अब देख लीजिए इफेक्ट है, हम समझ, इसका भी कोई कारण है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है। कारण क्या है कि हमारी मृत्यु होती, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर जन्म ले लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता हम इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर चले भी जाते हैं फिर यहीं आ जाते हैं, क्योंकि आपने ओल्ड एज में एक मकान बनवाया। अच्छा, शरीर छूट गया तो मकान का सुख कौन भोगेगा आपके ख्याल में? आपके रिश्तेदार? नहीं, वो केयर टेकर के तौर पे रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप पुनर्जन्म लेकर आप ही उसको भोगेंगे। ये कर्मा फिलॉसफी कहती है, अगर आप आगा पीछा हटा दें तो जैसे कोई फिल्म देखे और उसको पीछे का देखा ही ना हो तो आगे का उसको पता ही नहीं लग सकता, नो लिंक। इसलिए भी हम आत्मा है। तो आप देखेंगे ये जो भारत की बेसिक स्पिरिचुअलिटी का जड़ था कि मैं आत्मा हूं, जो खुद भगवान ने सुनाया था और हम समझते भी हैं, उसको हम भूल गए हैं। दिस इज वन रीजन कि हम हैप्पी नहीं रह सकते और हम वरीड हो गए हैं। अब वरी किस चीज की होती है? लॉस की। आपको चिंता क्यों लगती है? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ठीक है? किस सबसे ज्यादा वरी किस चीज के लॉस की होती है? फियर जो है, फियर और वरी इकट्ठे चलते हैं। सबसे ज्यादा भय दुनिया में किस चीज का है हमें? जी डेथ, करेक्ट। कि अगर हमारे पीछे कोई पिस्टल रख दे और बोले माल देना या जान देना है तो हम क्या कहेंगे? ले जा। अच्छा, अब ये फियर सबको है या नहीं है? उसका कारण क्या है कि हमें पता नहीं उसके बाद क्या होने वाला है, हमने कभी सोचा ही नहीं। हम समझते हैं दिस ओवर, खत्म हो गया सारा। तो अब आप गौर से देखिए कि जिसको ये फियर रहेगा वो जितने एक्विजिशन करेगा, जितनी चीजें बढ़ाएगा, उसका फियर बढ़ेगा या नहीं? एक व्यक्ति साधारण है, उसको एक डॉक्टर देखने आएगा। कोई बड़ा सेठ है, उसको 10 डॉक्टर बुलाए जाएंगे कि भी बेचारा बच जाए। बचना तो है नहीं किसी ने। तो ये जो है ये एक सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से है। हमने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जरा सी अटेंशन की जरूरत है। तो पहली बात यह है कि हमें अपने आप को, हमारे नाम में दो हिस्से आते हैं, एक ह्यूमन एक बींग, ठीक है? हम ह्यूमन बींग हैं। हम ह्यूमन को तो बहुत डेवलप कर लिया, बहुत जानते हैं, ह्यूमन के लिए एजुकेशन ले ली, ह्यूमन के लिए सब कुछ कर लिया, पोजीशन पोजेशन सब कर लिया। और बींग के लिए, बींग का पता ही नहीं। अब पीछे से करंट आ रहा है, बिजली चल रही है, करंट हटा दो, हो गया। तो अब आप सोचिए कि बींग और ह्यूमन दोनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर किसी के घर में बिजली का कनेक्शन तो हो और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ही ना हो तो किस काम का है? कनेक्शन कोई काम आता है? इसलिए, और सिर्फ सारे अप्लायंसेज हों और कनेक्शन ना हो फिर तो दोनों आवश्यक हैं। फिर भी दोनों में से कौन सा इम्पोर्टेंट है? बिजली का कनेक्शन। इसी प्रकार से बॉडी और सोल दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोल बॉडी के बगैर काम नहीं कर सकती, अनुभव नहीं कर सकती, और बॉडी सोल के बगैर खत्म। इसलिए पहली बात है कि दोनों में से इम्पोर्टेंट है बींग, और हमने बींग का ध्यान नहीं दिया, ह्यूमन को चलाते रहे। ये उस तरह है जैसे कोई नई कार खरीद लाए, नई कार को तो बच्चा भी चला लेता है, उसको मैकेनिक्स की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर कार काफी पुरानी हो जाए, उसको तो मैकेनिक ही बाहर ले जा सकता, पता नहीं क्या ठीक करना पड़ जाए। तो आज की दुनिया पुरानी है, इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। नई दुनिया में नहीं है, चालू कर दो खिलौना चलता रहेगा, उसमें कुछ गड़बड़ होनी नहीं, क्योंकि आज दुनिया पुरानी है। आपको पता है आज की दुनिया को क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? कौन सा लोक है ये? कौन सा लोक है? लोक, लोक मृत्यु लोक, कलयुग युग है। एक होता है हिस्ट्री, एक होती है ज्योग्राफी। तो ये जो है ना युग, ये हिस्ट्री में आता है, टाइम फैक्टर है। लोक प्लेस फैक्टर में आता है। कौन सा लोक है ये? मृत्यु लोक, ठीक है? अब आप सोचिए हम सब मृत्यु लोक में हैं, इसका मतलब क्या होता है? यानी हमें उस जगह का वीसा मिला है, मृत्यु पहले है लोक बाद में है, कि जाओ, पर एक बात है जब मर्जी बुला लेंगे, है ना? तो ये हमारा मृत्यु लोक है। तो अगर हमने अपने आप को बॉडी से जोड़ा, ये ठीक है कि हमें सुख बॉडी के द्वारा फील होता है, लेकिन अगर हमने डिस्टिंग्विश नहीं किया सुख को भोगने वाला और सुख देने वाला, तो वी विल होल ऑफ अवर लाइफ आप जो मर्जी करते रहिए, जो आप पा रहे हैं वही पाएंगे। आजकल क्या पा रहे हैं हम, जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो क्या कहते हैं, कहो भी क्या हाल चाल है, हैं? जैसे बीमार हो, हाल चाल तो बीमार का पूछा जाता है, और दूसरा फिर क्या कहता, जवाब नहीं देता, क्वेश्चन आंसर भाई तेरा क्या हाल है, है ना। वो कहता भी, फिर वो कहता है जो दिन कट जाए अच्छा है, हैं? जैसे किसी जेल में जेल काट रहे हो, आप बताओ ये हमारी लाइफ है। फिर हम दोस्ती करते हैं ये सोच करके मेरी खुशी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होती, डिवाइड हो जाती है। क्या आप मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड कर सकते हैं? आप देखिए 2 × 2 कितना होता है, बढ़ गया ना। 1/2 × 1/2 क्या होता, घट गया ना, किया तो मल्टीप्लाई। अगर एक दुखी व्यक्ति दूसरे दुखी व्यक्ति से मिलेगा तो वो उसका रोना रोएगा, वो उसका डबल हो जाएगा आपका दुख, यही फॉर्मूला है ना। इसलिए उसने खुशी लुटाते चलो, खुशी तो आज अंदर होगी तो लुटाएंगे। इसलिए अब आप देखिए बेसिक कंफ्यूजन कहां, पहली बात आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं बॉडी मान के चलता हूं, बड़े अफसोस की बात है, माई को आई कहता हूं और आई को जानता नहीं, और सारा दिन सारी लाइफ माई के लिए काम करता रहता हूं, सोचता हूं मैं आई के लिए कर रहा हूं। आजकल कहते हैं लोग बड़े सेल्फिश है, हमें बड़ा अफसोस है कि सेल्फिश हो है ही नहीं वो बेचारे। आप देखिए ये क्या है, हाथ है, इसको किसका हाथ कहते हैं, मैं हाथ या मेरा हाथ, मेरा। पूरी बाजू, मैं बाजू या मेरी बाजू, पूरी बॉडी, मैं शरीर या मेरा शरीर, मैं कहां है भाई। और आजकल हमने सारी आई अपने आई कार्ड पासपोर्ट जो भी आपका है इस बॉडी से जोड़ा हुआ है। आपका एड्रेस पूछेंगे कौन सा बताओगे, पेडर रोड बॉम्बे है, अच्छा वो तो शरीर का है ना, पिछले जन्म में था ना अगले में रहना, इसमें भी लोग बदलते रहते हैं। तो बताओ पिता का नाम, बॉडी वाले का, अच्छा क्वालिफिकेशन बॉडी की है, हर चीज बैंक बैलेंस बॉडी का। तो भाई ये माई का है या आई का है? पहली बात तो बॉडी ही माई है, इसलिए गीता के भगवान ने कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य, देह और देह के सभी संबंधों को छोड़ो, अपने आप को सोल से आइडेंटिफाई करो। अब आप देखिए मजा, हमने क्योंकि हमने आई को माई से कंफ्यूज किया हुआ है, पोजेसर को पोजेशन से कंफ्यूज किया हुआ है, मालिक को मलकियत से कंफ्यूज किया हुआ है, तो थ्रू आउट द लाइफ हम इसी इल्यूजन में रहते हैं कि सुख के साधन सुख हैं। आप देख लीजिए, हम पैसा इकट्ठा करते हैं किस लिए, सुख के लिए, लेकिन वो तो सुख का साधन है ना। मनी इज ओनली ए मीन्स टू एन एंड, मनी बाय इटसेल्फ तो आप जानते हैं, मायदास की कहानी सुनी हुई है आपने, जिस चीज को हाथ लगाओ सोना हो जाए, ठीक है। अच्छा तो जितनी हम चीजें इकट्ठी करते हैं लाइफ में वो सारे एक्चुअली रिसोर्स हैं, उनमें बाय इटसेल्फ किसी चीज में सुख नहीं है। अभी वो बोल रहा था गाते रहो मुस्कुराते रहो, है आज हिंदुस्तान में तो रोने के भी गाने बन गए हैं, है? तब कहते खुशी के गीत गा, खास कहना पड़ता है, नहीं तो गीत तो खुशी के ही होते थे। नाउ टेक फॉर एग्जांपल म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग किस लिए होता है, खुशी के लिए। वैसे तो आदमी का दिल नाचना चाहिए, पैर धरती पर नहीं पड़ने चाहिए जब खुश होता है, और खुशी की स्टेट ही डिफरेंट होती है। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, कोई आपसे टकरा जाता है कहता है सॉरी, तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं कह, ठीक कोई ठीक है। और आप बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, कोई ट्रेजिडी हो गई है, वही आदमी टकराता और कहता है सॉरी, फिर आप क्या कहते हैं, है? इतना बड़ा इंसान है, कहते हैं ना बहुत कुछ कहते हैं, फर्क क्या हुआ, स्टेट ऑफ माइंड। अब आप बताइए कि ये जो खुशी है आप किसी की नौकरी टूट गई है, कोई बड़े अफसोस में है, जा रहा है, आगे म्यूजिक बज रहा है, डांस हो रहा है, अच्छा अच्छा गाना बज रहा है, उसमें से गुजर रहा है, तो क्या वो म्यूजिक डांस सिंगिंग उसको खुश करेगा या ज्यादा उदास करेगा? क्या ख्याल है? है ना, वो कहेगा भाई, इसीलिए लोग जब किसी के घर जाते हैं, किसी के कुछ ट्रेजिडी हो जाए तो बड़ा मुंह बना के नकली, बड़ा अफसोस है जी, ऐसे हो गया, गोली कहाँ लगी, आंख के पास, शुक्र है आंख तो बच गई, ये हमारा हाल है। अच्छा, और किसी के घर जाते हैं, खुशी का मौका होता है, चाहे कुछ भी हो, तो हम कहते भी बड़ी खुशी हुई। आजकल हमारी खुशी भी औपचारिक हो गई है ना, आजकल हमारी खुशी बड़ी बड़ी स्टेट से घूमती, असली नहीं है। क्या होगा, दो कलीग हैं, एक का प्रमोशन हो जाए तो दूसरा जाएगा, भाई बड़ी खुशी हुई, मुबारक हो तुम्हारा प्रमोशन हो गया, अंदर क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, पड़ोसी के घर बहुत बड़ी नई कार आ जाए तो सारे सोचने लग गए कहां से ले आया, और अगले दिन पुलिस आ जाए तो कहेंगे हाँ पता लगा कहां से ले आया। इस तरह की हमारी खुशी होगी, बड़ी औपचारिक। अच्छा, लेकिन रूट कॉज क्या है कि हमने सुख के साधनों को सुख मान लिया, और सारी उम्र साधन इकट्ठे करते रहते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ये भी नहीं सोचते क्या मैं इन साधनों को, इन दी प्रोसेस, इनको उपभोग करने की शक्ति तो नहीं गवा रहा। इसलिए हमारी अप्रोच होलिस्टिक नहीं है। कई लोग परिवार का ध्यान नहीं रखते, पैसे में लगे रहते हैं, कई लोग कई काम है उनको, एक ही है साधन, पैसा। आजकल हो गया पैसा, पहले आ गया, पहले क्या होता था, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और तीसरी बात जो थी, आज उल्टा हो गया है। करेक्टर वरेक्टर का तो उनको पता ही नहीं, स्कूल में भी कॉलम हटा दिया, बियर इज ए गुड मॉरल करेक्टर, टीचर भी पहले देखो, आज क्या हो गया, लास्ट वाला जो है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब उसको हम प्रायोरिटी देते दो, लेकिन हाल क्या होता है आप देख लीजिए, जितने ज्यादा पैसा वाले लोग होंगे, या तो उनको डायबिटीज हो जाती है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, ध्यान उस तरफ रहता है, कमाने का तरीका भी उल्टा सीधा होता है। अब क्या होता है कि साहब जा रहे हैं कार में, रसगुल्ले की दुकान आई, ड्राइवर ने कहा साहब जरा रुको, वो सामने खड़ा 6 रसगुल्ले खा रहा है, और साहब कार में बैठे हैं, सारी दुकान खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है बेटा जीना है नो शुगर। अच्छा बताइए, हु इज मोर फॉर्चुनेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपके पास यू कैन बट यू कांट, कितनी बड़ी ज्यादा अफसोस की बात है। इसलिए हमने कहा इसका रूट ये है कि हमने साधनों को सुख मान लिया, और सारे साधनों को देख के खुश होते रहते हैं, उसका उपयोग भी नहीं कर पाते, उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते, तो नतीजा क्या होता है, बीमारी में पहले कह देते हैं कि भी अगर पैसा नहीं रखूंगा, हार्ट अटैक हो गया तो 1,000,000 देना पड़ेगा, कहां से लाऊंगा पहले ही। अरे ना अपने पर भरोसा, ना भगवान पर भरोसा, या तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर भरोसा, या ये पैसा इकट्ठे करने पर भरोसा। एक साधु जी थे, उन्होंने एक नया चेला रख लिया, तो नया चेला आपको पता बड़ा एक्टिव होता है, तो सुबह सुबह साधु जी ने कहा दरिया के पार सत्संग करने जाना है, तो चेले ने कहा हाँ जी, और चेला गौर से देखता रहा कि रास्ते में नदी आती है, कश्ती आती है, साधु जी ने कोई पैसा तो रखा ही नहीं, तो चेले ने होशियारी से अपने लंगोट में पैसे रख लिए, और आगे जाके साधु जी से भी पहले पोर्टमैन को कहता है कितने पैसे, उसने कहा जी 1-1 रुपया, ये लो 2 रुपया, महात्मा जी को बैठा लिया, और नदी में जाके कहता है महाराज आपने तो कमाल कर दी, आपने पैसे ही नहीं रखे, अगर मैं नहीं रखता तो हमारी तो इज्जत चली जाती। तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहते बेटा अब तक तो मैं रोज फ्री आता था, मेरे से कभी पैसा नहीं लेते थे, अब रोज लेंगे तेरी वजह से। अच्छा, इसलिए जो नियत हम रखेंगे, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे फलाने हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाएगी तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपने खुद ही सोचा है। इसलिए हम लोगों के अपने पर फेथ, अपनी कर्मों पर फेथ सब हटा के, क्योंकि हम साधनों से ही खेलते हैं तो साधनों से सुख दुख को नापते हैं और अब नतीजा देख रहे हैं। अब आप आइए तीसरी बात पर, वो और भी मजेदार है। आपके ख्याल में खुशी की फीलिंग किसको आती है, बॉडी को आती है या सोल को आती है? क्यों जी, आत्मा निकल जाए और मुर्दा हंस के कहे हा 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 तो आप क्या करोगे? हैं, है ना? अच्छा, शाम को अंकल जी ऑफ हो गए तो क्या भी रात को बच्चे डर जाएंगे, इनको डिस्पोज ऑफ कर आओ, अपने हाथ से करके आए और रात को वो खिड़की में आके खड़े हो जाएं तो आप क्या कहोगे, अंकल जी? है ना? अच्छा, सीधी बात है। इसलिए आप ये सोचो कि सुख की अनुभूति, आप मुर्दे के मुंह में लड्डू डाल के देखो, दूध पिलाओ। आजकल हम उल्टा करते, जिंदा जी उसका कुछ नहीं करेंगे, जब शरीर छोड़ेगा तो भावना में आप पर उसको शॉल चढ़ाएंगे, 20-30 शॉलें चढ़ जाएंगी, फिर वो देखो शमशान घाट वाला क्या करता, ऐसे थोड़ी देर में साइकिल पर बेचने जा रहा होता है वो शॉलें। हमें बड़ा दुख होता है कि अंत में छोटा सा कपड़ा उसकी पावर है, अभी हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जिंदा जी नहीं करेंगे, तो मरने के बाद ही हम राम नाम सत करेंगे, जिंदा जी नहीं करेंगे। कहेंगे भाई जब मरेगा कोई हम जाएंगे, देखो ना क्या ले गया, कुछ नहीं है दुनिया में, क्या ले गया। जरा सा बाहर आएंगे कहेंगे देखो क्या छोड़ गया है, ये हमारा हाल है ना, क्योंकि हम उसको सीन को देखने ही नहीं चाहते। हम सोचते सोचो ही नहीं मृत्यु का, क्यों? जैसे कबूतर होता है ना, बिल्ली आती है तो क्या करता है, बिल्ली है ही नहीं, इसलिए बिल्ली उसको खा जाती है। अगर अपनी होश में रहे तो उड़ सकता है, बिल्ली तो नहीं उड़ सकती, ऊपर छत पे चला जाए बिल्ली क्या करेगी। तो हम हमेशा जब कार एक्सीडेंट होता है, आप देख लो उस वक्त हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, हम होश हवा जानते भी हैं कर नहीं पाते, क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया हुआ। तो मरते समय कोई कह दी अब मैं ये कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑल एक्सपीरियंसेस आर स्पिरिचुअल, इनफैक्ट ऑल वैल्यूज आर स्पिरिचुअल। हम लोग कहते हैं मटीरियल वैल्यू फलानी ये वो, जितने जीवन के मूल्य हैं वो सब आत्म अनुभूति के हैं। लव, प्रेम, जो बहुत बड़ा मूल्य है, जो आज दुनिया में घट गया है असली वाला, है ना? बड़ी बड़ी फैमिलीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप रोज देखते हैं तमाशा उनका, अखबारों में आता है, प्रेम नहीं है। अच्छा, प्रेम है लेकिन मनुष्यों आत्माओं का आत्माओं से नहीं है, वस्तुओं से है, चीजों से है, है? ये है कि ये आ जाए धन से है, इससे है, छोटी बात पर मर्डर कर देते हैं, इसलिए वो भी इग्नोरेंस है। तब करके आप गौर से सोचिए, मैं क्यों बता रहा हूं कि व्हाट आर दी रीजंस कि हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, पापड़ बेलते हैं, जो भी करते हैं खुशी के लिए, और खुशी ही हमें नहीं मिलती, और खुशी से भी नीचे जाके हम तो शांति मांगते हैं। अरे खुशी को छोड़ो, शांति ही मिल जाए भाई, है ना? शांति के लिए प्राइज देते हैं, वर्ल्ड प्राइज देते हैं, वर्ल्ड पीस प्राइज हर साल देते हैं। और मजे की बात देखिए, दुनिया में कोई भी प्राइज अटेनमेंट के बाद दिया जाता है कि नहीं? आप कोई चीज अचीव कर लें तो प्राइज मिलता है, शांति प्राइज सिर्फ कोशिश करने पर मिल जाता है। ये वंडरफुल बात है, शांति के लिए कोशिश की। ब्रह्मा कुमारी को भी 6 मिले हुए हैं पीस प्राइज यूएन से, लेकिन उनका सिस्टम है किसने कोशिश की। अब बताओ कोई एमए पढ़े कि जी कोशिश की थी, इसको डिग्री दे दो, तो ये भी वंडरफुल। इतने हम पीस से भी निराश हो गए, खुशी तो उसके बाद की बात है। एक होता है दुख माइनस, जैसे बैंक बैलेंस माइनस हो, एक होती है शांति, बैंक बैलेंस जीरो है, ना दुख है ना सुख है, और एक होता है सुख प्लस है। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, जीरो तो इक्वेटर की तरह इमेजिनरी डेट है। किसी बैंक में जीरो बैलेंस हो तो क्या कब तक अकाउंट चलेगा उसका? तो हम शांति ढूंढते हैं अशांति की दुनिया में। इस दुनिया में या सुख है या दुख है, शांति नहीं है। आजकल कंप्यूटर का जमाना है ना, एक बारी किसी को व्यक्ति को कंज्यूमर को रिमाइंडर आ गया कि आपका जीरो अमाउंट ड्यू है, बहुत दिन से आपने दिया नहीं। अच्छा, उसने भी सोचा ठीक है, उसने जीरो अमाउंट का चेक बना के भेज दिया, आपको रिमिटेंस भेज रहे हैं। उसको थैंक्स आ गया कि आपने अपना बैलेंस जल्दी क्लियर कर दिया। अब ये जीरो जो है, इट इज पीस। तो हम क्या जिंदगी में ढूंढते हैं? जब दुखी होते हैं तब सोचते हैं कि चलो दुख हट जाए, है ना। लेकिन कहते हैं हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज। शांति कोई हमारी स्टेज नहीं है, वो तो प्लस में जाना चाहिए। तो बात हो रही है खुशी की और सुख की। तो क्योंकि हमने अपनी वैल्यूज को भी आत्मिक ना समझ के, सारे गीता में लिखा हुआ स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, और आज हमने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो करके, जैसे होता ना मांगने वाला, भगवान से भी मांगते हैं, मांगने से कुछ मिलता है? भगवान ने हमें लक्ष्मी नारायण बनाया था, आज हम लक्ष्मी जी से मांग रहे हैं कुछ दे जाओ, है? दरवाजे खोल के रखते हैं, दिवाली के दिन सफाई करके रखते हैं, नींद आ जाती है, कोई चोर कुछ ले ही जाता है। हम कहते हैं पहले खोलते कि मेरे घर में आना, पड़ोसी के घर में नहीं आना। ये हमारे बड़े अजीब किस्से हैं, वी डोंट नो। लेकिन वास्तव में अगर आप गॉड ऑफ गीता ने क्या हमारे लिए दिया था, और हम गीता की किताब ले लेते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसकी कसम भी खा लेते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं? गीता की कसम खाओ सच कहूंगा, दूसरे को भी कहेंगे गीता की कसम खाओ सच कहूंगा। हम झूठ का बीज बो रहे हैं, क्योंकि दोनों में से एक तो झूठा है। आप सोचो, ये हमारे सिस्टम्स हैं। खैर इसको छोड़ दीजिए, बेसिक बात यह है, अगर हमें खुशी चाहिए तो खुशी कोई क्यों चाहिए? पहली बात यह है, हमारे को इतना निराश किया गया है, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स ने, शास्त्र वालों ने, विद्वानों ने बहुत सोच सोच के कहा दुख सुख तो शुरू से चले आ रहे हैं। आपने सुना है ना, वो सोचते हैं ऐसा कभी जमाना ही नहीं था जब लोग सदा सुखी रह सकते हो, दुख सुख शुरू से चले आ रहे हैं। अब इसका लॉजिकली कंक्लूजन क्या निकलता है? समथिंग दैट हैज बीन देयर सिंस द बिगनिंग विल कंटिन्यू टू बी देयर टिल द एंड। तो सुख दुख से हम छूट ही नहीं सकते। जब छूट ही नहीं सकते फिर काहे का रोना? फिर वो कहते जी पहले कम था अब ज्यादा हो गया। अच्छा, ज्यादा भी हो गया, फिर आपस में देखते हैं मेरा कम है इसका ज्यादा, इसलिए मैं सुखी हूं। पढ़ाते हैं कि नहीं? एक आदमी ने कहा मेरे पास जूते नहीं थे, मैं बड़ा दुखी था, किसी को देखा उसका पैर नहीं है तो मैं सुखी हो गया। अब बताओ है? इस प्रकार की हमारी कंपेरेटिव हैप्पीनेस है, और वो भी हमें दुखी देती है। अब देखिए, एक तो हम अपने सुख ना होने से दुखी हैं, एक दूसरे के सुखी होने से दुखी हैं। आजकल ज्यादा हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन भी क्योंकि रिसोर्सेज को सब कुछ समझते हैं, तो रिसोर्सेज देखकर कंपैरिजन करते हैं कि फलाने ने 6,000 करोड़ का मकान बना लिया। अब कोई वल्गर वेस्ट ऑफ मनी करे, वी शुड हेट दैट थिंग, और बट लेकिन हम कहते हैं साहब ये बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मींस कि आप ऊपर से बड़े होने चाहिए। विवेकानंद जी तो कह गए थे इन माय कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन। आजकल हम भी वही हो गए हैं। इसलिए हमें अपनी बेसिक अपने हित में, हम किसी का फायदा नहीं कर रहे, अपने हित में एक तो दो तीन बातें समझनी चाहिए। पहली बात जो अब हम बात कर रहे हैं वो दुख की दुनिया में सुखी रहने की कर रहे हैं, ठीक है। आजकल तो दुख की दुनिया, इसके लिए दूसरा फार्मूला है, आपको अपने आप को अलूफ करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कंपैरिजन, सिनेमा के एक्टर को देखिए, सिनेमा का एक्टर हीरो एक्टर, उसको हीरो एक्टर इसीलिए कहते हैं को कोई भी रोल दे दो वो उसको बेस्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, डॉक्टर बना दो तो असली डॉक्टर से अच्छा डॉक्टर बनेगा, पेशेंट बना दो तो असली पेशेंट से अच्छा पेशेंट बनेगा, जेलर बना दो तो हंटर मारेगा, कैदी बना दो तो हंटर खाएगा। उसको पोर्टर कुली भी बना देते हैं, लेकिन क्या उस एक्टर को राजा भी बना देते हैं? जो अमोलुमेंट मिलता है, जो उसका पैसा मिलता है, वो कुली मिलने का कम, डॉक्टर मिलने का ज्यादा, जेलर मिलने का ज्यादा, पेशेंट मिलने का कम मिलता है या एक जैसा मिलता है? सोचने की बात है, एक जैसा। उसको जो एप्रिसिएशन मिलता है कि लोग पैसा देकर उसकी एक्टिंग देखने जाते हैं, वो क्या राजा बनने से ताली बजती है उसकी, या कुली बनने से भी बजती है? बजती है। क्यों? वो एक्टर भी तो कह सकता है, साहब मेरे से झाड़ू लगवा रहे हो, मैं हीरो एक्टर हूं, मुझे कोई अच्छा रोल दो। नहीं, तो मतलब क्या हुआ कि अकम्प्लिशमेंट और मेथड ऑफ अकम्प्लिशमेंट से उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। इस और हम देखिए, वो तो 2-3 घंटे का एक्टर होगा, आप कौन से एक्टर हैं अपनी लाइफ के? हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ का हीरो एक्टर है। तो हमें क्यों ये लगता है कि झाड़ू लगाना घटिया काम है, बर्तन मांजना और घटिया काम है, भाषण करना और बढ़िया काम है, बढ़िया कपड़े पहन ले, ज्वेल्स वाली घड़ी तो मैं वैल्यूएबल हो जाता हूं? इससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है और हम आर्टिफिशियल चीजों में आके कंपैरिजन करते हैं। फिर हमारे अंदर ईगो आता है, मैं इससे बड़ा हूं, अरे इसकी क्या मजाल मुझे ये बोल गया है, फिर बदले की भावना आती है, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आज के समाज में हम सब उसी का हिस्सा हैं। बेसिक थिंग इज दैट ह्यूमन बीइंग हैज फॉरगॉटन हिज सेल्फ। आप कभी मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखिए, अपने लिए नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखिए, सारे देखिए अच्छी तरह, क्या लिखा होगा उसमें, वांटेड व्हाट, ये लिखा होगा जो आजकल के पेइंग प्रोफेशन है ना, आईटी एक्सपर्ट फलाना, ये चार्टर्ड जो भी पैसे के, वांटेड डॉक्टर, ये वो होगा। किसी एक में भी नहीं लिखा होगा वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग। कभी पढ़ा आपने ऐसा? मेट और रिश्ता हो रहा है लाइफ का, ये हमारा हाल है। तो बाद में क्या नतीजा निकलता है, डॉक्टर तो मिल गया लेकिन वो कहता है किडनी निकाली या पैसे लाने तो मैं सीऊंगा नहीं। अब बताओ सारा ही ऐसा, क्योंकि मामला ही दूसरा, घर में चले जाओ तो भी वो रिश्ता वो प्रेम वो संबंध नहीं रहा, इवेल्युएशन करते हैं, ये हाल है। कहते हैं कि एक पिताजी अपने बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने ले गए, तो वहां एक शेर था, तो एक बच्चे ने कहा पापा ये शेर बाहर निकला है तो आपको खा जाएगा? उसने कहा हाँ। कहता है तो घर को कौन से नंबर की बस जाती है, बेटा पूछ रहा है, हा? तो ये हमारा हाल है कि हमें और किसी का कंसर्न नहीं है, कारण यही है कि बॉडी कॉन्शियस। तो अब आप देखिए, अपने को बॉडी मानने से कंपैरिजन आता है, अपनी सेल्फ वर्थ चली जाती है, और बॉडी मानने से 5 बड़ी बड़ी ऐसी मेलेडीज पैदा होती हैं जो हमें जिंदगी भर, जैसे किसी के अंदर कैंसर हो और वो बड़ी अच्छी खुराक खाए कि शायद मेरे अंदर लग रही होगी, वो कैंसर को ही लगती है, जिंदगी भर हम तड़पते रहते हैं, ऊपर से हंसते हैं। आजकल क्या है, घर में मेहमान आ रहे हैं, आओ जी, फिर पूछते हैं कितने मंडे तक तो रहोगे ना, ताकि पता लगे कितनी कितने रहना बेचारे ने, नकली हमारी हंसी है। क्यों? अंदर तो दुख है। तो उसका कारण यही है, बॉडी कॉन्शियसनेस। अब आप देखिए, 5 ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कभी सुखी नहीं रहने देंगी। नाम मात्र का सुख फ्लीटिंग है, प्लेयर होगा, हैप्पीनेस भी नहीं होगा। वो कौन सी हैं? और बड़ी पुरानी हो गई हैं वो, और रोज हम आरती में गाते हैं, आरती करते हैं ना, यहां कोई जज साहब बैठे हैं कोर्ट के, हाँ? किसी कोर्ट में चले जाओ, उसके रजिस्ट्रार से पूछो कि जितने केसेस हैं रजिस्टर किस वजह से हैं, तो उनमें ये पांच बीमारियां ही होंगी, आइदर इंडिविजुअल और मिक्सचर। वो पांच क्या है? ईगो, नंबर वन अहंकार है। कहा जाता है दया धर्म का मूल है पाप मूल अहंकार। अभिमान से व्यक्ति खुद भी अपमानित फील करता है और दूसरे का भी अपमान करता है। जिसको ईगो होगा ना, जरा सी बात पे इतना इंसल्टेड फील करेगा, हिल जाएगा। और निर्माणता तो गई। अच्छा, दूसरा है ग्रीड, जो आजकल आप देखते हैं, जिसका बदला हुआ रूप आजकल भ्रष्टाचार कहते हैं। अच्छा, तीसरा है एंगर, गुस्सा। चौथा है मोह, भाई भतीजावाद, ये मेरा है। दशरथ जी क्यों मारे गए? वनवास तो राम जी को हुआ था, क्यों मारे गए? हैं जी। अच्छा, और पहला है काम विकार, जिसको हम सिंपल शब्दों में सेक्स लस्ट कहते हैं। आजकल तो आग की तरह फैला हुआ है। तो जिसके अंदर ये पांच होंगे, वो बेचारा काम की चिता में, क्रोध की चिता में, लोभ में बुरी तरह दुखी रहेगा। वो उसको सुख हो ही नहीं सकता। एक लेडी आई एक दुकान पर, वो गलीचे बेचता था कारपेट्स। बोली ये दिखाओ, फिर बोला नहीं वो दिखाओ। बेचारा डेढ़ घंटा दिखाता रहा। हर गलीचा खोलता था तो इसमें 10,000 मिलेगा, नहीं चलो इसमें 8,000 मिल जाएगा। उसका मन डामाडोल होता रहा, कितना प्रॉफिट बनेगा। डेढ़ घंटे बाद बाहर जाके आई, कहती बारिश बंद हो गई, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, आप बताओ, उसको हुआ कुछ नहीं, लेकिन उसको लगा अरे मेरा इतना आज प्रॉफिट होना था, नहीं हुआ। तो ये जो हमारे होता है सिंपली कि हम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज को भूल गए। रोज आरती में गाएंगे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ये विषय विकार क्या होते हैं? यही पांच होते हैं। अच्छा, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। हम देवताओं को कहेंगे जाके आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपकी जय हो। फिर यहां तक बंद कर दो, ठीक है। फिर अपने लिए कहेंगे मैं नीच हूं पापी हूं, भाई क्या जरूरत है कहने की है? लेकिन बेचारे बोलते हैं उनके आगे आ जाएंगे, रोज बोल के आ जाएंगे। तो दिस इज नॉट द वे। जब तक हम उसकी रूट बॉडी कॉन्शियसनेस को अटैक नहीं करेंगे, और सीधी बात है सच है ये, लोग कहते हैं सच और अहिंसा, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा चली, हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट में लगा हुआ है सत्यमेव जयते। लेकिन ओरिजिनल फर्स्ट सच क्या है जिससे हमने डेविएट होकर हम ये हाल को पाए हैं? अब नतीजा क्या है? कहेंगे करेंगे नहीं। हम सब कहते हैं लाइफ इज ए जर्नी, कहते हैं कि नहीं? लाइफ इज ए जर्नी और लाइफ इज ए परमानेंट थिंग, जर्नी है। अच्छा, जब आपकी किसी जर्नी का डेस्टिनेशन आता है, आप खुश होते हैं या उदास होते हैं? भाई मान लीजिए आप पूना जा रहे हैं और पूना आ रहा है, तो आप खुश होंगे या उदास होंगे? बल्कि पूना लेट हो रहा होगा तो आप बार बार घड़ी देखेंगे, पूना क्यों नहीं आया? और आपका को पैसेंजर भी कहेगा भाई आपका पूना आ गया, लाओ तुम्हारा सामान इकट्ठा करें। और जिंदगी का पूना आ जाए फिर आप क्या करते हैं? लाइफ इज ए जर्नी, मैंने नहीं उतरना, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। तो नकली कहते हैं ना, क्योंकि वी हैव नेवर अंडरस्टूड लाइफ इज ए जर्नी। किसकी जर्नी? कौन सा पैसेंजर है जो आया है? फिर हम कहेंगे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत मुसाफिर। कौन सा, कौन सी भोर जो जागत है सो भाई, कौन सा जागना? तो वो दैट वी आर मिसिंग। इसलिए बेसिक बात ये बैठती है कि आज के पहले स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं थी, देवी देवताओं को स्पिरिचुअलिटी की जरूरत, क्योंकि वो पर्सोनिफाइड स्पिरिचुअल थे। अगर आप सचमुच स्पिरिचुअल बन जाएं, तो आपको किसी जगह मंदिर जाने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद ही पूजनीय हो गए। और उसकी निशानी है कि हमारे भारत के देवी देवता, हम जाके उनके आगे झुकते हैं कि नहीं झुकते? उनके स्टैचू हैं तो यहां होके गए हैं। और अगर आप सिर्फ लक्ष्मी नारायण को देख लें, तो हम सबके वो प्रतीक हैं। लक्ष्मी नारायण फैमिली लाइफ में है कि नहीं है बताइए? गेरु कपड़े तो नहीं पहने हुए। लक्ष्मी नारायण भी ज्वेल्ड हैं, आज तो सोने का भाव बहुत ज्यादा हो गया, मेरा खैर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनको सिर से पैर तक सोने के जेवरों से हीरे से सजाते हैं और बहुत बहुत सेट उनके रखते हैं, सेठ लोग देते हैं कि आज इनका ये करना। उनके ड्रेसेस कितने ब्यूटीफुल होते हैं। अच्छा, फिर उनको भोजन कैसा ऑफर करते हैं, दलिया खिचड़ी बॉइल्ड वेजिटेबल या हलवा पूरी खीर, आप देख लो क्यों करते हैं। क्योंकि लक्ष्मी धन की प्रतीक है, तो धन खराब चीज हुई। कई लोग कहते हैं नहीं, पैसा वैसा अच्छी चीज नहीं, माया है, ये तो सब खराफत की जड़ है, हमें दे जाओ, जान छोड़ाओ अपनी। लेकिन नहीं, पैसा भाग्य की निशानी है अगर प्रॉपरली यूज हो। इसको यूज करने वाला ठीक व्यक्ति चाहिए। आपने नई कार ले ली, ड्राइविंग आती नहीं, तो कहां तक बकरे की मां खैर मनाएगी। तो इसलिए गड़बड़ है। अच्छा, फिर परिवार में भी है, राजा भी राज्य भी करते हैं, खाते पीते भी। अच्छा, हम सब भी तो यही चाहते हैं, लेकिन उनमें हमारे में फर्क भी है कुछ। उनकी आयु लंबी है, कहते अमर अमर लोक के निवासी, हम मृत्यु लोक में आ गए। क्या लक्ष्मी नारायण ने बॉडी नहीं छोड़ी होगी? छोड़ी तो है, लेकिन पूरी आयु पर छोड़ी है। अगर आप, हम सब सोचिए कि बॉडी हमेशा ही पूरी आयु पर छूटे और बिना दुख के छूटे, जैसे आप रात को सोते हैं पता लगता है, सुबह उठते हैं पता लगता है। अगर ऐसे शरीर छूटा करे कि आप पुराने से निकले नए में गए, ये उनका शरीर छोड़ने का तरीका था, क्योंकि इससे टाइट नहीं थे। कहते कपड़ा उतारना था, आजकल ऐसे जैसे खाल उतारना हो किसी की, क्योंकि वो रहते ही। तो पहली बात यह है, अब आप कहेंगे वो कहां से आ गए। एक फंडामेंटल मिथ आपको तोड़ना होगा, वो ये है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड ओल्ड। आप ये समझ लीजिए, ये एक स्पिरिचुअल ट्रूथ है और हमें दिल में पक्का रखना चाहिए कि कोई भी चीज पुरानी नहीं रची जा सकती। या रची जा सकती है? कोई भी बिल्डर पुराना मकान बना सकता? नया ही बनाएगा। कोई भी मोटर कार कंपनी पुरानी कार बना सकती है? नहीं। कोई माता बासी रोटी पका सकती है? नहीं। नई बनेगी, पुरानी होगी। अच्छा, अगर ये लॉ है तो भगवान जो दुनिया का रचयिता है, परम पिता है, उसने कैसी दुनिया रची होगी? आजकल तो लिख देते हैं, हे भगवान दुनिया के मालिक, कैसी दुनिया, कैसी ये दुनिया बनाई है। कहते है, मैंने बनाई है। कोई ऐसा पंखा देखे जो हवा कम और आवाज ज्यादा देता हो तो कह रही उषा कंपनी ने ऐसा पंखा क्यों बनाया? कहेंगे हमने थोड़ी बनाया है ये। कोई ऐसे खस्ता हाल कार को देखे जिसका हॉर्न के समय सब कुछ बजता हो तो कहेगी ये किसने बनाई? ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए ये फर्स्ट फंडामेंटल हमें याद रखना चाहिए कि ये दुनिया नई थी। और ये कंपैरेटिवली हम कहते हैं मृत्यु लोक है, क्योंकि हमारी आयु घटती जा रही है। और उसको कहते थे अमर लोक के, पूरी आयु भोग के जीते थे वहां हॉस्पिटल। स्वर्ग मैंने क्या होता है, ये है नरक। इसका सबूत चाहिए आपको? कोई भी यहां शरीर छोड़ता कहां गया कहते हैं, स्वर्गवास हुआ। तो ये क्या है फिर, है ना? सीधी बात है ना जी, हमें राम राज चाहिए तो ये क्या है फिर, है ना? इसलिए हम देख भी रहे हैं, तो हम इज्जत से कह देते हैं हमारा फलाना स्वर्गवास हुआ। लेकिन सचमुच हम सब भारतवासी स्वर्गवासी थे, और उसका सबूत ये हमारे मंदिर है। किसने बनाया? गॉड ने बनाया होगा। अब आप गीता को पढ़िए, गॉड क्या कहते हैं कि जब सृष्टि पर ऐसी धर्म की गिलानी हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, और मनुष्य चाहते हुए भी अच्छे कर्म नहीं कर सकते। आज आप हमारा क्या हाल है, हम चाहते हुए भी सच नहीं बोल सकते। आपने देखा है ये आदमी खून करके गया है, कोई आपसे पूछे पुलिस वाला, आप क्या कहेंगे? मैंने नहीं देखा। क्यों? झंझट में कौन पड़े। एक बार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से आ रहा था, एक बस का एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे 5-6 महीने बाद मेरे घर में कोई भाई आए, बोले जी आज हमारी पेशी है, ड्राइवर था या क्या था, आप कह देना कि एक्सीडेंट जो है ना ऐसे ही हो गया, किसी नेग्लिजेंस से नहीं हुआ। मैं चला गया, मुझे कार में बैठा के ले गए। जब मैंने बयान दे दिया, उन्होंने मुझे ये नहीं सोचा इसके पास पैसे हैं भी कि नहीं, तो मैं वापस आके घर में आके पैसे दिए उसको, स्कूटर वाले को। ये हाल है। तो इसलिए मैंने सोचा भी मैं काहे को गया है? ये तो कर सकता हूं, उसका भला कर दूं, पर साथ में ये भी हो गया। तो आजकल ऐसा जमाना है, आप भला करोगे, रोज आप देखते हैं दो आदमी गलत काम कर रहे हैं, बीच में आता उसी को मार देते हैं, तो कौन जाएगा इसमें। इसलिए भगवान कहता है जब ऐसी हालत हो जाए, और आप डेली देखते हैं, कहा गया था जहां नारी का सत्कार होता है वहां देवताओं का वास होता है। ठीक है, हमारे देश में नारी की पूजा होती थी, अब निमित्त मात्र होती है। अच्छा, जहां नारी का तिरस्कार हो वहां किसका वास होता है? देवताओं से उल्ट है। सूरत इंसान की, सीरत हैवान की। तो आज आप रोज पढ़ लीजिए, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यंगेस्ट बेबी से लेकर एजेड महिलाओं तक से एक साथ बलात्कार हो रहा है, पिता अपनी पुत्री से बलात्कार कर रहा है, और इतनी बढ़ती जा रही हैं कि कोई अपने आप को सेफ नहीं मानता। तो ये भारत जीने वाला है? आखिर ऐसे और चलेगा तो क्या होगा? ये सिर्फ रिपोर्ट कर देते हैं, वो भी डबल है। पहले बलात्कार के कारण बनाते हैं जैसे टीवी वाले हैं, बाद में कहते फलान, दोनों तरफ उनको फायदा है। इसलिए गवर्नमेंट भी कह देती क्या करें, पुलिस लगा दो ये। तो बेसिकली जब ऐसी दुनिया होती है तो दुख और बढ़ जाता है। तो जो फर्स्ट विकार था काम विकार, वो आउट ऑफ कंट्रोल जंगल की आग की तरह फैल जाता है। सब दुखी है। अब आपकी इज्जत कोई खतरा हो जाए, जान कोई खतरा हो जाए, तो दुनिया कैसी हुई? इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहते हैं दिस इज टाइम ऑफ एमरजेंसी। हमें जो व्यक्ति सेल्फ कंसर्न, अपना तो हित सोचे हम और समाज का कुछ कंसर्न रखता है, उसको ये सोचना चाहिए इसकी रूट क्या है। और इसकी रूट है बॉडी कॉन्शियसनेस एक्सट्रीम, जिसको हम मेटीरियलिज्म कहते हैं, अर्थात बॉडी आत्मा को ना मान के, इन सुखों को सुख के साधन ना मान के, साधनों को सुख मानना और आत्मा की कॉन्शियसनेस में जीना ही नहीं। तो प्रेम आत्मा में है, शांति आत्मा में है, संतोष आत्मा में है, जितनी वैल्यूज हैं, शेयरिंग है, केयर, सब आत्मा में है। तो आत्मा को भूल जाओगे तो मतलब क्या करोगे ना। इसलिए यहां पर बताया जाता है देन ऑल सेड एंड डन, हमको पता भी लग जाए ये ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये जैसे आइसबर्ग होता है ना, है? वो उसके नीचे 8th, 9th, 10th नीचे होता है, तो लगता है हवा इधर को जा रही, वो इधर को जा रहा है। तो हमारा मन हमको घसीट लेता है, पीछे के हमारे संस्कारों ने आत्मा को कमजोर कर दिया। इसलिए ये जो हम राजयोग कहते हैं, जो गीता के भगवान ने भी कहा था कि बच्चा जब कमजोर हो जाता है, खुद कमजोर है लेकिन पेरेंट साथ है तो बच्चा पावरफुल है, है ना? गली के बाहर बहुत फ्रेशियस डॉग है, बच्चा उससे डरता है, लेकिन पिता की उंगली पकड़ कर जाता है तो डॉग को भी चिढ़ाता है, ले कर ले क्या करना है मेरा। इसी प्रकार से हमें परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, लेकिन हम उसकी संतान बॉडी नहीं है, उसकी संतान भी हम आत्मा के रूप में है, वो भी परम आत्मा है। तो वो हमें धन नहीं देता और नहीं देता, शक्ति देता है, क्लियर बुद्धि देता है, उसके साथ योग लगाओ। वैसे भी आप जिसके साथ कनेक्ट हो गए, जिसको याद करोगे, वैसे आपके अंदर आ जाएंगे हालात। आप किसी गुस्से वाले के साथ बात करो उस तरह करेगा, प्रेम से करो तो सबसे बढ़िया, ऑल क्वालिटीज कंप्लीट, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग डज नॉट मीन किसी गैदरिंग में आप जाके चार बातें सुने, लगातार सत्य आत्मा को मानकर जो मैं सत्य हूं, ये मेरा टेम्परेरी चोला है, और परमात्मा से कनेक्ट हुआ जाए तो हमारे अंदर वो शक्ति आएगी जिससे आपको ऑटोमेटिकली कोई मेहनत नहीं। हम लोगों ने देखा, कई लोग समझते बड़ी मेहनत है इसमें, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। क्यों? आप अपने से टाइट कपड़े पहनोगे तो मेहनत, लूज पहनोगे तो दिक्कत, अपने फिट के पहनोगे, ये तो आपका अपना ही स्वधर्म है वैल्यूज को धारण करना। तो वो सहज राज योग थोड़ा सा यहां सीखकर आप जाइए और घर में प्रैक्टिस करिए, सुबह कर लीजिए, आपका सारा दिन फर्क वाला पड़ जाएगा। रात को भगवान को अकाउंट दे दीजिए। वो कहता है जैसे सेल्समैन होता है, यहां पैसा मिला यहां नहीं मिला, मालिक को कहता है छुट्टी, शायद रात को अकाउंट दे दीजिए, आपको अगले दिन और शक्ति दे देगा। धीरे धीरे स्लोली आप एम्पावर्ड फील करेंगे और वो आपकी इंटरनल पावर इतनी पावरफुल होगी कि जैसे मक्खन छाछ के अंदर होता है, जब वो सेपरेट हो जाए एक बारी तो आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। आप मक्खन को सेपरेट करने के बाद एक टुकड़ा भी कभी मिक्स नहीं कर सकते। आप ऑटोमेटिकली मंथन कर करके डिफरेंट हो जाएंगे, सब काम करेंगे, बेटर करेंगे, विद लीस्ट मीन्स और रिसोर्सेज करेंगे, हर वक्त खुश रहेंगे। और ये जो खुशी बांटने वाली बात है, हमने ये क्यों चलाए रखा है ब्रह्मा कुमारी? हम कोई आपके ऊपर कल्याण नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं। क्यों? कि हम बांटेंगे हमारी खुशी बढ़ेगी, ठीक है ना? क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिनको आप यूज करो तो वो बढ़ती हैं। लास्टली मैं आपको तीन बातें बताऊंगा, टाइम हो गया मेरा। पहली बात वो ये है, हमको जन्मते वक्त दो शक्तियां हर एक को मिलती हैं, एक भूलने की, एक याद रखने की। अगर हम केयरफुल रहें तो जो हमें भूलना है उसको भूलें, जो याद रखना है वो याद रखें। हम उल्टा करते हैं, जो याद रखना चाहिए वो भूल जाते हैं, जो भूलना चाहिए वो याद रखते हैं। अब आप दुख की बातें याद रखोगे तो आपको सारा दिन दुखी रहोगे, ठीक है? तो पहली बात यह है, फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमने सुना हुआ है बहुत बार, यू आर नॉट फॉरगिविंग एनी अदर पर्सन, आई एम फॉरगिविंग माई सेल्फ। क्योंकि जब तक मैं उसको निजात नहीं पाऊंगा मैं भूलूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं तो मुझे बार बार तंग करेगी। इसलिए जिसको कहते हैं फुल स्टॉप, पास्ट को फुल स्टॉप लगाना, जो बात हो गई सो हो गई, लेट बाई गॉन बी बाई गॉन हम कहते हैं, प्रैक्टिकल करिए। इंग्लिश लैंग्वेज में हर सेंटेंस फुल स्टॉप से पूरा हो जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। हमारे को रोज मौका मिलता है कि आज का दिन पूरा हो गया, कल नया दिन शुरू करना, पर हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, पिछली बातें अगले दिन याद रखते हैं। एक ये है, आपकी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। लाइफ में हर जगह हम जीरो करवाते हैं, टैक्सी वाला कहता है साहब मीटर जीरो देख लो, पेट्रोल वाला कहता है साहब मीटर जीरो देख लो, पर अपना मीटर हम जीरो नहीं करते, ठीक है? नंबर टू, कि हम एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप बचे रह सकते हैं। हमारा सारी दुनिया की घटनाएं देख देख कर हमारा जो दिल है उसके सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कहां होता है? आपके अंदर कोई भी बात हो दिल पर, फिर सोचते हैं तो दिल हमारा घायल हो गया, और जब दिल पूरा काम नहीं करता तो हम उसको ही कोसते हैं, अरे दिल तू पारे की तरह है, तू कंट्रोल में नहीं। तो अगर हम एक फार्मूला रख लें, बी ए वेल विशर ऑफ ऑल, सबके लिए विदाउट एक्सेप्शन, ये नहीं मेरी सास को छोड़कर सबके लिए, फिर नहीं चलेगा, मेरे पड़ोस, ऐसे नहीं, विदाउट एक्सेप्शन सबके लिए, वो कुछ भी करें, दे आर एक्टर्स, हर एक्टर को अपना पार्ट करना है, रावण को रावण का पार्ट करना है। हम कहे रावण तो लक्ष्मण बन जा, मुझे मुड़ा दे, तो रामलीला ही नहीं चलेगी, है? इसलिए वो कर रहा है, उसकी जरूरत है, पर वो अपना पार्ट कर रहा है। तो हमें वेल विशर ऑफ ऑल, तो आप देखेंगे आपका हार्ट, जो हम भक्ति में कहते थे जो तुझको कांटा बोए उसको बो तू फूल, कम से कम आप सेफ रहेंगे, आपका हार्ट हेल्दी हो जाएगा। तो फिर हेल्दी व्यक्ति जब कुछ अचीव कर लेता है ना, फिर उसको बहुत खुशी मिलती है, और भी करूं, ये ठीक है। ओम शांति,
ओम शांति। डोंट वरी बी हैप्पी। चाबी मिल गई, चाबी मिल गई खजाने की, कितने खुशी जैसे कोई
खुराक नहीं, खुशी जैसी कोई खजाना नहीं। तो हम सबको चाबी मिल गई, अब खुश रहेंगे हमेशा। तीन चीजें, पहली बात फॉरगिव एंड फॉरगेट, और जो चीज याद रखनी चाहिए वो याद रखिए, जो नहीं रखनी है उसको भूल जाइए। दूसरी बात,
ये तो दो ही हुई भाई, तीसरी तो मैं भूल गया, सॉरी। अच्छा कि आपने, वो ये हैव ए टू गिव अप्रोच, हमेशा देने की भावना रखिए, बस उसमें बड़ा फायदा रहेगा आपको। अगर आपने किसी से 100 रुपया लेना हो तो आपका हाथ कैसे होता है, ठीक है, और 10 रुपया देना हो तो आपका हाथ कैसे होता है ऊपर। ये लाइफ का फॉर्मूला है, लेने की भावना छोड़ दीजिए, आप सदा कंटेंटेड रहेंगे। तो तीन बातें हो गई, पुट ए फुल स्टॉप, हैव ए टू गिव अप्रोच, आपका घटेगा नहीं, और बी ए वेल विशर ऑफ ऑल। थैंक यू बहन जी, आपने मौके पे मुझे, मैं गिनती भूल गया था, इन्होंने भी नहीं याद कराया। अच्छा,
आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आदरणीय भ्राता ब्रिजभवन भाई जी, हम सबको चाबी मिल गई है खुश रहने की, इसलिए अब सब वापस जाकर के हमेशा खुश रहेंगे, है ना। वी प्रॉमिस हिम, वी ऑल, थैंक यू।